दिन भर तारीख 20 दिसंबर दिन मंगलवार में हूं मोहनलाल शर्मा। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा, बर्लिन के व्यस्त क्रिसमस बाजार में ट्रक घुसने का हादसा दुर्घटना नहीं बल्कि आतंकवादी हमला था।
Dies ist ein sehr schwerer Tag. Ich bin wie Millionen von Menschen.
रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोव की हत्या की जांच के लिए रूसी जांचकर्ताओं की टीम पहुंची तुर्की। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार हर रोज एक नया फरमान जारी कर रही है, लोग परेशान।
हर रोज एक नया कॉमा लग जाता है, जो 8 नवंबर को नोटबंदी आई है, मोदी जी कभी आरबीआई कभी कुछ ना कुछ नया रोज लगाते रहते हैं, व्यापारी चोर बन गया है।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अमरेश द्विवेदी से। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने बर्लिन के क्रिसमस बाजार में हुए ट्रक हादसे को दिल दहलाने वाली घटना बताया और कहा कि उनकी सरकार का अनुमान है कि एक चरमपंथी कार्रवाई थी। भीड़भाड़ वाले क्रिसमस बाजार में एक ट्रक के घुसने से 12 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग जख्मी हो गए। बर्लिन में एक प्रेसवार्ता में चांसलर मर्केल ने कहा कि जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद होगा यदि हमलावर शरणार्थी साबित हो जाएगा। जर्मन मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि संदिग्ध हमलावर पाकिस्तान का शरणार्थी था, हालांकि उसने हमले में किसी तरह का हाथ होने से इनकार किया है। रूसी जांचकर्ताओं की 18 सदस्यीय एक टीम तुर्की पहुंची है जो इस बात की जांच करेगी कि तुर्की में रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोव की हत्या की वजह क्या रही होगी। एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी ने एक आर्ट गैलरी में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तुर्की की पुलिस ने इस सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें 6 हमलावर पुलिसकर्मी के परिवार के सदस्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमलावर सीरिया में रूस की भूमिका के खिलाफ था। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अमरीकी समुद्री ड्रोन जब्त किए जाने पर अमरीका की आलोचना का कड़े शब्दों में जवाब दिया है। चीन ने पिछले हफ्ते फिलीपींस के समुद्र में जब्त किया ड्रोन अमरीका को लौटा दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियिंग ने कहा कि अमरीका में जो लोग चीन की निंदा कर रहे हैं वे ठीक नहीं कर रहे। लोग जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। हमने कई बार पहले भी संकेत दिया है कि अमरीकी सेना चीन से सटे समुद्र में सर्वे करने और टोह लगाने के लिए जहाज और विमान भेजती रही है, जो कि चीन की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन इन गतिविधियों के खिलाफ रहा है और हमेशा से मांग करता रहा है कि अमरीका ऐसा ना करे। ये थी चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पूर्वी अलेप्पो में बचे लड़ाकों और नागरिकों को वहां से निकालने के लिए सीरियाई सेना लाउडस्पीकर पर लगातार संदेश जारी कर रही है। संदेशों में चेतावनी दी जा रही है कि सेना उस इलाके में आज प्रवेश कर जाएगी। रेडक्रॉस का कहना है कि पिछले गुरुवार को अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 25,000 लोग अलेप्पो छोड़कर गए हैं, लेकिन संस्था ने चेतावनी दी है कि हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरियाई सरकार ने अभियान का जायजा लेने के लिए उसे 20 और अधिकारियों को भेजने की अनुमति दी है। इस बीच मॉस्को में रूस, तुर्की और ईरान के विदेश मंत्री अलेप्पो और सीरियाई संघर्ष के मसले पर बैठक कर रहे हैं। भारत में 500 और 1,000 के नोट बंद किए जाने के बाद अब कुछ ही दिन बचे हैं जिसमें लोग पुराने नोट बैंकों में जमा करा सकते हैं। बैंकों में 5,000 रुपये तक जमा करने के आरबीआई के निर्देशों को लेकर फैली गलतफहमी दूर करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि 30 दिसंबर तक सिर्फ एक बार 5,000 रुपये से ज़्यादा नकद रकम बैंकों में जमा कराई जा सकती है। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने कहा,
छोटे व्यवसायिक को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ वो जाए, इसमें एक अमेंडमेंट कल हम लोगों ने किया है और वो अमेंडमेंट ये है कि जितनी भी अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस अपनी इस 2 करोड़ तक टर्नओवर में वो डिजिटल मोड से करता है या चेक मोड से करता है तो उसकी प्रिजम्प्टिव इनकम 8% नहीं मानी जाएगी लेकिन 6% मानी जाएगी। अगर वो कैश ट्रांजैक्शंस करता है तो उसकी इनकम जैसे 2 करोड़ रुपए पे 16 लाख होगी और अगर वो डिजिटल मोड से करता है या चेक मोड से करता है तो उसकी इनकम 2 करोड़ की टर्नओवर पे केवल 12 लाख मानी जाएगी।
नेपाल की पुलिस 15 साल की एक किशोरी की मौत की जांच कर रही है जिसे एक हिंदू प्रथा के तहत माहवारी के दौरान एकांत स्थान पर रहने को कहा गया था। पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिमी नेपाल के सुदूर इलाके में रहने वाली लड़की ठंड से राहत पाने के लिए आग जला रही थी कि दम घुटने से उसकी मौत हो गई। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। इस दिन भर कार्यक्रम की शुरुआत हम अंतर्राष्ट्रीय खबर से कर रहे हैं। जैसा कि समाचारों में आपने सुना, जर्मन चांसलर ने स्पष्ट किया है कि बर्लिन के व्यस्त क्रिसमस बाजार में ट्रक घुसने का हादसा दुर्घटना नहीं बल्कि आतंकवादी हमला है। कल रात हुए इस हमले में एक ट्रक अचानक लोगों को रौंदने लगा, 12 लोगों की मौत हो गई, करीब 50 घायल हैं। जर्मन मीडिया के मुताबिक हमले का संदिग्ध पाकिस्तान से आया 23 साल का शरणार्थी हो सकता है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, हालांकि उसने इस हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया है। पुलिस भी उसकी पहचान के बारे में अभी आश्वस्त नहीं है, लेकिन विरोधी पार्टियां इसे जर्मनी की प्रवासी नीति से भी जोड़कर देख रही हैं। चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि अगर हमलावर शरणार्थी हुआ तो बेहद दुखद होगा। जर्मनी में क्या कुछ चल रहा है, बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए दिव्या आर्य से।
Der Lastwagen wurde bewusst in die Menschen gesteuert.
दिन भर पुलिस सूत्रों और मीडिया के हवाले से आई अलग अलग जानकारी के बाद बर्लिन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जर्मनी के गृह मंत्री थॉमस डे मेज़िये ने साफ शब्दों में कहा,
अब हमें इसमें कोई शक नहीं है कि सोमवार का हादसा दरअसल एक हमला था। ट्रक आम लोगों पर जानबूझकर चढ़ाया गया। बर्लिन के लोग कल एक बर्बरतापूर्ण हमले का शिकार हुए हैं।
जर्मनी के गृह मंत्री थॉमस डे मेज़िये के शब्द। पुलिस ने भी ये दावा किया है कि ट्रक को क्रिसमस बाजार में जानबूझकर घुसाया गया, इसीलिए इसे आतंकवादी हमला माना जा रहा है। पुलिस एक व्यक्ति से पूछताछ भी कर रही है जिसे ट्रक का ड्राइवर माना जा रहा है। पर एक ताज़ा बयान में पुलिस अध्यक्ष क्लाउस कैंट ने कहा है कि अभी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उस आदमी की क्या भूमिका है।
तहकीकात जारी है, पहचान करने के कई तरीके हैं, जैसे डीएनए सैंपल को लॉरी में मिले सैंपल से मिलाना, हाथ और बाकी सामान पर बारूद के निशान। हम अभी ये जानकारी जुटा रहे हैं, अभी साफ नहीं है कि यही व्यक्ति ड्राइवर था।
दिन भर जर्मन मीडिया ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से कहा कि ये व्यक्ति जिससे पूछताछ की जा रही है वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान से जर्मनी आया शरणार्थी है। इस बीच जर्मनी में एक अप्रवासी विरोधी पार्टी AfD के राजनेता इस घटना को चांसलर एंगेला मर्केल की प्रवासियों को जर्मनी बुलाने की नीति से जोड़ते रहे, जिसकी वजह से पिछले साल जर्मनी में लगभग 10 लाख लोग पहुंचे हैं। टेलीविजन पर सीधे प्रसारण के जरिए जनता को संबोधित करते हुए चांसलर मर्केल ने कहा कि अगर हमलावर सचमुच शरणार्थी पाया गया तो ये बहुत दुखद होगा।
Ich habe großes Vertrauen zu den Männern und Frauen, die seit gestern Abend daran arbeiten.
मुझे उन लोगों पर पूरा भरोसा है जो सोमवार देर रात से इसकी तहकीकात में लगे हैं। तफसील से पूरी पड़ताल होगी और कानून के तहत जितनी सख्त सजा मुमकिन हो दी जाएगी। हमें इसके बारे में पुख्ता तौर पर बहुत कुछ नहीं पता, पर हम अभी इसे आतंकवादी हमला ही मान रहे हैं।
चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। पुलिस के मुताबिक हमले में इस्तेमाल हुई ट्रक की लाइसेंस प्लेट पड़ोसी देश पोलैंड की है। इसमें पोलैंड का एक नागरिक बैठा था जिसकी घायल होने के बाद मौत हो गई। अपुष्ट जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति भी ट्रक का ड्राइवर हो सकता है। यूरोपीय संसद के जर्मन सदस्य और यूरोपीय संसद के विदेश मामलों की समिति के पूर्व अध्यक्ष एल्मार ब्रोक ने बीबीसी से कहा है कि इस हमले को शरणार्थियों के प्रति जर्मनी के दोस्ताना रवैये से जोड़कर देखना गलत होगा।
शरणार्थियों का बड़ा हिस्सा वो लोग हैं जो सीरिया, इराक और ऐसी जगहों में इस्लामी चरमपंथियों से भागकर यहां आ रहे हैं। हमें ये फर्क समझना चाहिए और ये साफ करना चाहिए कि इस आतंकवादी का प्रवासन से कोई लेना देना नहीं है। हमें सख्ती बरतनी चाहिए, पर हमें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए।
एल्मार ब्रोक के शब्द। ये क्रिसमस बाजार पश्चिम बर्लिन के मध्य में स्थित है। इस संदिग्ध हमले के बाद फ्रांस के क्रिसमस बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां नीस शहर में इस साल 14 जुलाई को ऐसा ही एक ट्रक हमला हुआ था जिसमें 86 लोग मारे गए थे। नीस हमले की जिम्मेदारी खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले गुट ने ली थी।
तो जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि बर्लिन के व्यस्त क्रिसमस बाजार में ट्रक के घुसने का हादसा दुर्घटना नहीं बल्कि आतंकवादी हमला है। बर्लिन के बाद एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। रूस का कहना है कि वो तुर्की में रूस के राजदूत आंद्रे कारलाफ की हत्या की जांच में हिस्सा लेने के लिए रूसी जांचकर्ताओं की एक टीम तुर्की भेज दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल अंकारा में एक आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शनी में भाषण देने के लिए उठे आंद्रे कारलाफ पर 22 साल के युवक ने गोली चलाई थी। हमलावर बंदूकधारी की पहचान तुर्की के एक पुलिस अधिकारी के तौर पर हुई। हमलावर मेवलुत मिर्त एंटास अंकारा में दंगा विरोधी पुलिस के सदस्य थे। बंदूकधारी नारे लगा रहा था, अलप्पो को मत भूलो, सीरिया को मत भूलो। बंदूकधारी ने अल्लाहु अकबर के भी नारे लगाए। राजधानी मास्को में तुर्की और ईरान के प्रतिनिधियों से बात करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि इस हमले से आतंकवाद के खिलाफ हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। सर्गेई लावरोव कह रहे थे कि कल हमारे राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए कि तुर्की के विशेष दल की जांच के अलावा रूसी जांच दल अंकारा जाएगा, और जहां तक मुझे पता है जहाज अंकारा में उतर गया है। इसी विमान से राजदूत आंद्रे कार्लोव के शव को भी रूस लाया जाएगा, साथ ही उनके परिजनों व मित्रों को भी यहाँ लाया जाएगा। इस दुखद घटना ने हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए और प्रतिबद्ध बना दिया है, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के शब्द। तुर्की के राष्ट्रपति रिचेप तैयब अर्दोगान ने कहा कि यह हमला तुर्की व रूस के संबंधों को खराब करने के मकसद से किया गया था। राष्ट्रपति अर्दोगान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर इस हमले के बारे में बात की और कहा कि जो लोग रूस व तुर्की के संबंध को खराब करना चाहते हैं उनका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह हमला तुर्की व रूस के बीच सामान्य हो रहे द्विपक्षीय रिश्ते और सीरिया की शांति प्रक्रिया में रुकावट पैदा करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा,
ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором.
Владимир Путин कह रहे थे, इस हमले का एक ही जवाब हो सकता है, आतंकवाद के खिलाफ और कड़ा रवैया, और दुष्ट इसे महसूस भी करेंगे। रूस ने पहले ही इस घटना के तथ्यों की आपराधिक जांच शुरू कर दी है। दल अंकारा पहुंचकर तुर्की के जांचकर्ताओं के साथ हिस्सा लेगा। मैंने तुर्की के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बात की है। हम जानना चाहते हैं कि जिस हत्यारे ने राजदूत की हत्या की उसके पीछे कौन था, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। सीरिया में चल रहे युद्ध में रूस के सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन करने के विरोध में हाल ही में तुर्की में प्रदर्शन हुए थे। तुर्की में अधिकारियों का कहना है कि मेवलुत मर्त एंटास 22 साल का एक पुलिसकर्मी था और उसने अंकारा के दंगा निरोधी पुलिस दस्ते में 2 साल तक काम किया था। ये हमलावर हैं। तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक पश्चिमी तुर्की के आइडन प्रांत में सोक शहर में साल 1914 में इनका जन्म हुआ था। अल अरेबिया के मुताबिक वो 19 दिसंबर को ऑफ ड्यूटी था और घटनास्थल पर वो अपना पहचान पत्र दिखाकर दाखिल हुआ था।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद कार्यक्रम में रुख भारत की खबरों का करते हैं। जैसा कि आपने समाचारों में सुना कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ई भुगतान करने वाले छोटे कारोबारियों के लिए कर लाभ की घोषणा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 2 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी और कंपनियां अगर बैंक व डिजिटल माध्यमों से भुगतान करते हैं तो उन्हें कम कर देना होगा। ये तो बात हुई आज की, लेकिन ज्यादा बवाल कल रिजर्व बैंक की उस घोषणा पर मचा हुआ है जिसमें उसने कहा था कि पुराने 5,000 से ज्यादा जिसको जमा करना है वो एक ही बार में जमा करें। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा,
इफ दे गो एंड डिपॉजिट विद द बैंक एनी अमाउंट ऑफ करेंसी।
अरुण जेटली कह रहे थे, अगर लोग बैंक जाकर कोई भी राशि जमा करते हैं तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछने जा रहा, इसलिए 5,000 रुपए की सीमा उन पर लागू नहीं होगी, बशर्ते वो उसे एक बार में जमा करें। लेकिन अगर वो हर दिन जाते हैं, कुछ रकम जमा करते हैं, व्यक्ति एक ही है, तो संदेह होता है कि आखिरकार वो रकम कहाँ से उसे मिल रही है। ऐसे में उस व्यक्ति के लिए जरूर कुछ चिंता की वजहें हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली के शब्द। सरकार के इस फैसले को आम व्यापारी कैसे देख रहे हैं, बीबीसी संवाददाता सलमान रावी जा पहुंचे आम व्यापारियों के बीच।
आज आप मेरे साथ हैं सलमान रावी के साथ दिल्ली की खारी बावली के इलाके में, और ये वो इलाका है जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये थोक मंडी है। यहाँ पर देसी घी से लेकर मसाले से लेकर दाल चावल सब यहाँ पर थोक में मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर जो एसोसिएशन है व्यवसायियों की, उसके कई यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कुछ व्यवसायी खड़े हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा।
राजीव, बट कल जो ये बताया जा रहा था कि जो बैंक्स ऑफिशियल्स हैं वो इसको पहले इंक्वायरी करेंगे जो फीजेबल है या नहीं है,
तो अभी जो बता रहे हैं क्लेरिफिकेशन आई कि बैंक ऑफिशियल विल नॉट मतलब आपको तंग नहीं करेंगे। बत्रा साहब कह रहे थे कि मुश्किल वाली बात है क्योंकि लोगों ने पैसा तो जमा कराया है एक मुश्त। मेरे साथ प्रवक्ता भी है यहाँ पर संजीव जी। संजीव जी बताइए कि इसका क्या फॉलो अप होगा? क्या
मुझे तो ये सब बातें इसलिए अजीब लग रही है कि हर रोज एक नया कौमा लग जाता है। जो 8 नवंबर को नोटबंदी आई है, मोदी जी कभी RBI कभी कुछ ना कुछ नया रोज लगाते रहते हैं। व्यापारी चोर बन गया है इस काम के अंदर। व्यापारी के लिए तो वो तो काला धन का एक सोर्स हो गया है, जबकि उसका धंधा सारा खत्म हो गया। 30% से 40% धंधा यहाँ पे खत्म हो गया। लोग आ ही नहीं रहे, काम लोगों के पास पैसा ही नहीं है, सामान क्या खरीदेगा।
देखिए 50-60% बिजनेस में फॉल आउट तो है, चाहे वो होलसेल है चाहे रिटेल है। जो नोटिफिकेशन कल RBI ने निकाला ये फर्स्ट डे आना चाहिए था। आज जब सब कुछ निमट गया, पॉलिटिकल पार्टीज को आप रिलीफ दे रहे हैं कि आप जितना मर्जी पैसा जमा करें कोई नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा। तो सुना आपने कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है इन्होंने, ये पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दलों को आपने छूट दे दी और व्यवसायियों पर शिकंजा, तो ये किस रूप में आप इसको देखते हैं साहब?
ये बहुत ही गलत है। अभी 20,000 किया है, 20,000 तक कोई भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी को पैसा अगर दिया जाएगा तो उसकी इंक्वायरी नहीं होगी।
ये बताइए कि व्यवसाय को एक तरह से शक के दायरे में रखा गया, व्यवसायी टैक्स पे नहीं करता, खाली इनकम टैक्स नौकरी वाले पे करते हैं,
व्यवसायी को सिर्फ चोर समझा गया है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, वो ये नहीं देखते कि वो पॉलिटिकल इलेक्शन कैसे लड़के आते हैं। वो खुद चोर हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स चोर हैं और चोर बना रखा है व्यापारी को। व्यापारी जो उनको टैक्स भी देता है, रेवेन्यू भी देता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है, उसके बावजूद व्यापारी चोर है। डिमोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, पर आपने उसको रोकने का, रिश्वत रोकने का क्या काम किया है?
ये तो सारा काम रिश्वत रोकने के लिए हो रहा है, करप्शन रोकने के लिए हो रहा है।
कैसे रुक रहे हैं ये रिश्वत, बताइए ना। जो ये नोट बड़े बड़े निकल रहे हैं, किस व्यापारी के घर से निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स के घरों के रुपए निकल रहे हैं, ये उनके लॉकर से निकल रहे हैं। अभी तो लेटेस्ट आई कैन डू बिजनेस ऑन चेक, आई कैन डू बिजनेस ऑन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। 2% कमीशन कौन देगा भाई साहब? 2% तो धंधा नहीं है यहाँ वाले, खाली बोरी में चीनी की खाली बोरी में धंधा कर लेते हैं यहाँ के लोग। आप चाहते हैं कि 2% वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और कमीशन भी दे दें?
तो सुना आपने कि व्यापारियों का कहना है यहाँ पर कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे इनका धंधा धोखा तो कम से कम नहीं हो सकता, उसके लिए पूरी व्यवस्था बनानी होगी, क्योंकि इन्हें उसके लिए बैंकों को कमीशन देना पड़ता है, उसमें मार्जिन भी होता है, क्योंकि 2% पर जो है ये बिजनेस करते हैं यहाँ पर। और यही वजह है कि थोड़ा सा आशंकित है वो नए फैसलों को लेकर सरकार के। सलमान रावी, BBC, खारी बावली, दिल्ली।
खारी बावली के आम लोगों की आवाज, और इसमें ज्यादातर व्यापारी थे। नोटबंदी के दौर में हर रोज सामने आ रहे नियमों ने लोगों को भ्रम में डाल रखा है। सोमवार को यानी कि कल 5,000 रुपए से जुड़े कायदे कानून से लोग आम लोग परेशान हैं। दरअसल मुश्किल यह है कि लोगों के बीच इस नियम को लेकर स्पष्टता कम, कंफ्यूजन ज्यादा है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 30 दिसंबर तक सिर्फ एक बार 5,000 रुपए से ज्यादा नगद रकम पुराने नोटों में जमा कराई जा सकेगी। अगर आपके पास 500,000 रुपए के पुराने नोट में 5,000 रुपए से ज्यादा रकम है तो एक ही बार बैंक में इसे जमा करा दे। 30 दिसंबर के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने नोट मान्य नहीं होंगे। 500 और 1,000 के पुराने नोट में अगर 5,000 रुपए से कम है तो आप अलग अलग वक्त में उसे जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर रकम इससे ज्यादा है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ज्यादा रकम भी जमा कराई जा सकती है, लेकिन बैंक में कम से कम 2 अधिकारियों को आपको बताना होगा कि ये राशि पहले क्यों नहीं जमा कराई गई। अगर आपका जवाब संतोषजनक लगा तो रकम जमा कर दी जाएगी। हालांकि बाद में आने वाले ऑडिट में आपका बैंक खाता फिर से सवालों के घेरे में आ सकता है। तो ये आदेश कल आया था। BBC संवाददाता सलमान रावी ने बात की आर्थिक मामलों के जानकार M.K. वेणु से और पूछा कि 5,000 रुपए तक एक ही बार में पुराने नोट जमा कराने होंगे, सरकार के इस निर्देश को आप कैसे देख सकते हैं? क्या सरकार लगातार असमंजस की स्थिति में है?
देखिए, एक तरह से ये तो एक मजाक बन चुका है। अब तो लोग ये मजाक करने लगे हैं कि कहते हैं कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ तो कहते हैं कि मुझे बता देना बाहर आने तक अगर कुछ बदलाव होता है क्या। तो ये जो इन्होंने कल जो किया है ये सोचे बगैर एक आर्बिट्ररी, एक ब्यूरोक्रेटिक डिसीशन है, क्योंकि ये जो वित्त मंत्री ने जो शुरू में कहा था उसके खिलाफ जाता है। अरुण जेटली जो वित्त मंत्री है, उन्होंने ट्वीट डाला था जो आज अखबारों ने छापा है
जी,
ये कहते हुए कि आप सब जाके बैंक में एक साथ रश ना करें, खड़े ना होए, आप आखिर में भी दिसंबर के आखिर तक आप जा सकते हैं और तभी जाइए ताकि जो लंबी कतारें लग रही थी वो एकदम से वो स्प्रेड हो जाए थोड़ी सी, बैंक में जो रश जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एक ओवर टू मंथ। उसके बावजूद ये आरबीआई का जो नोटिफिकेशन आया ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ट्विटर में बीजेपी के ही कोई कई सांसदों ने ये ट्वीट किया है, ये तो जो प्रॉमिस जो किया था उसके खिलाफ है, ये एक किस्म से ट्रस्ट को बिट्रे करता है। तो समझ नहीं आ रहा कि सरकार में whether the left hand knows what the right is doing,
क्या तैयारी नहीं थी, क्या होमवर्क नहीं था।
डिमोनेटाइजेशन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अनाउंस किया उसके दो दिन बाद वित्त मंत्री ने ये कहा कि कैश की कोई कमी नहीं है और तीन चार हफ्ते में ज्यादातर सब कैश आ जाएगा सिस्टम में जो रिप्लेस करना है 15 लाख करोड़ जो भी है। मेरा ये कहना है कि 48 घंटे बाद तो आपको पता होने चाहिए था कि प्रिंटिंग कैपेसिटी कितनी है। चलिए ये मान के चलते हैं कि पहले सीक्रेसी मेंटेन करना था इसलिए शायद बताया नहीं, मगर उसके बाद आपको 48 घंटे में इतना तो आरबीआई से पता होना चाहिए था कि कितना टाइम लगेगा ये पूरी करेंसी को वापस प्रिंट करने में। अच्छा अभी भी ना आरबीआई गवर्नर कोई डेट दे रहे हैं कि भाई इस डेट तक पूरा हो जाएगा प्रिंटिंग।
विड्रॉल रेस्ट्रिक्शंस तो अभी भी हैं, 2500 रुपए एटीएम से निकल रहे हैं।
विड्रॉल रेस्ट्रिक्शंस पूरे मार्च तक रहेगा, अप्रैल तक रहेगा कह रहे हैं लोग। डिपॉजिट का जो इन्होंने किया तो लोग बिल्कुल घबरा गए क्योंकि उन्होंने कहा था कि 21 तारीख तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आरबीआई एक्ट के तहत जो लीगली डिपॉजिट में रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, फिर भी आप विड्रॉल में डाल सकते हो कुछ इमरजेंसी साइट करके। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि आप अगर 10,000 रुपए डालोगे तो पूछताछ भी होगी आपकी। तो अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास 1,500 के नोट थे और करोड़ों 100-200 करोड़ रहे होंगे उनके पास, अब वो जब अपने जो बैंक में डाल रहे तो उनसे कोई पूछताछ कर रहा है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है कि केवल आम आदमी से पूछताछ की जा रही है। तो प्रधानमंत्री ने कल टिप्पणी भी करी है कानपुर में अपने, प्रधानमंत्री ने पहली बार ही बोला कि हम जो छोटे जो चंदा देने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी को कैश चंदा देने वाले सबकी हम आइडेंटिटी आगे से सब सबका रिकॉर्ड रखेंगे, पारदर्शिता लाएंगे इस चीज में। अब आगे देखते हैं क्या होता है।
ये थे आर्थिक मामलों के जानकार एमके वेणु। 8 नवंबर को जैसा कि हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल बंद कर दिया था। इस घोषणा के बाद सरकार ने लगातार क्या क्या आश्वासन दिए और किस तरह से लगातार वो अपने फैसले बदलती रही। यदि क्रमवार तरीके से यानी कि 8 तारीख के बाद से लेकर अब तक जो जो फैसले सरकार ने लिए हैं उसमें क्या कहा है और किस तरह से सरकार अपने पूर्ववर्ती फैसले को लगातार बदलती आई है, यदि आप इस खबर को पढ़ना चाहते हैं तो bbchindi.com पर आइए। यहाँ पर शीर्षक है नोटबंदी कैसे बदलती रही सरकार की घोषणाएं, इसको आप पढ़िए और पूरा लेखा जोखा सरकार का आपके सामने आ जाएगा। गुजरात का सूरत शहर दुनिया के नामचीन डायमंड बाजारों में से एक है। हीरे को तराशने और पॉलिश करने के बाद यूरोप, अमेरिका व मध्य पूर्व के बाजारों में हीरे यहीं से जाते हैं और सालाना निर्यात लगभग $16 अरब का होता है। लेकिन नोटबंदी के बाद माहौल बदल गया है। बड़ी फैक्ट्रियों के अलावा सबसे ज्यादा धक्का इसमें काम करने वाले मजदूरों को लगा है। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव गुजरात के सूरत में हैं और उन्होंने हमें वहां से ये रिपोर्ट भेजी है।
नोटबंदी लागू होने के बाद अजय भाई का मन अब घर में नहीं लगता। सूरत में हीरे को तराशने और पॉलिश करने वाली फैक्ट्रियों में 15 सालों से काम कर रहे अजय भाई एक महीने से खाली हैं क्योंकि रोज के 600 रुपए की कमाई ठप पड़ी है। इनकी दिहाड़ी पर मां समेत 6 लोगों का परिवार चलता था लेकिन अब किल्लत के दिन हैं। अजय भाई ने बताया,
पहले हम 500-600 रुपया का काम भी कर लेते थे नोटबंदी के पहले, अभी मतलब काम नहीं कर रहे। उसका कारण यह भी है कि बैंक में जाए, रास्ते में खड़ा रहे, क्या करे। अब जहाँ भी ऐसी जगह है जहाँ सब लोग खुदकुशी कर रहे हैं वहाँ पे पेरा लगा दीजिए जब तक बैंक में लाइन है तब तक, क्योंकि वहाँ सब लोग खुदकुशी करने भी जा रहे हैं। मेरे को भी एक बार विचार आ गया था, मैं भी खुदकुशी करने जा रहा था।
भारत से सालाना $22 अरब का हीरा निर्यात होता है जिसमें से 80% से ज्यादा का शेयर गुजरात के शहर सूरत का है। लेकिन नोटबंदी ने सूरत के हीरा व्यापार को भी प्रभावित किया है और अजय भाई जैसे लोग अपने को इसी का मारा हुआ बताते हैं। उधर सूरत डायमंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश नावरिया के मुताबिक हालात पहले बहुत बुरे हो गए थे, अब थोड़ा बेहतर हो सकते हैं। दिनेश नावरिया ने बताया,
वर्कर का अकाउंट भी खुलवाया है, ट्राई भी किया है, लेकिन वर्कर को पैक कहीं फैक्ट्रियों ने वर्कर का पैक चेक से भी दिया है लेकिन जब उसको रिक्वायरमेंट रहती है वो उठाने के लिए जाते तो 3-4 दिन उसको लाइन में टोकन के लिए लगना पड़ता है, तो काम करे या पैसे के लिए लाइन में रहे।
अजय की ही तरह 46 वर्षीय अश्विन पटेल सूरत के पास के रहने वाले हैं। अपने 4 लोगों के परिवार के पालन पोषण का एकमात्र जरिया वे ही रहे हैं। लेकिन अब अश्विन को अपने बच्चों की फीस को लेकर चिंता हो रही है। अश्विन पटेल,
बस खाली घूम रहे हैं और छोटे छोटे यूनिट बंद हो गए हैं। हम जो काम पे बैठते थे वो यूनिट बंद हो गया है, दूसरी जगह बिठाते नहीं हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ डायमंड पूरे मिलते नहीं हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा यूनिट बंद हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास दूसरा कोई चारा है नहीं और ये यही काम सीखे है तो दूसरा काम क्या कर सकते हैं।
सूरत शहर में हीरे के तीन बड़े बाजार हैं जहां पर आस पड़ोस के व्यापारी बिना तराशे गए हीरे के ग्राहक ढूंढने आते हैं। शहर के बीचों बीच सरदार पटेल चौक के पास ही मीरा बाजार है जहां सैकड़ों की तादाद में व्यापारी और बिचौलिए बैठे हुए किसी भी समय मिल जाते हैं। लेकिन इन दिनों सभी की शिकायत मंदे पड़े धंधे से है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर कारोबार नकदी में होता रहा है। लेकिन 500 हजार के नोटों की बंदी और बैंकों से निर्धारित राशि निकालने के सरकारी फैसले से लोग नाखुश हैं और मजदूर अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। डायमंड फैक्ट्रियों में काम करने वाली मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था रत्न कलाकार विकास संघ के अध्यक्ष जयसुख गजेरा को सुनिए।
जो बेरोजगार रत्न कलाकार है उसको बेकारी बता दिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को लिखकर हम दिया है, कलेक्टर को भेजा है कि भाई ये राज्य सरकार को भेजिए और गवर्नमेंट को भी, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको भी भेजिए, बेरोजगार हुए हैं उसको बेरोजगारी बता दिए।
ज़्यादातर कारोबारी इस बात को लेकर सिर्फ उम्मीद रखते हैं कि एक नहीं तो दो महीने में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एक ऐसा कारोबार जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नकदी और कैश का लेन देन रहता था इस वक्त काफ़ी खस्ता हाल दिखता है और अजय भाई जैसों के लिए नोटबंदी से पहले वाले दिन ही अच्छे थे। नितिन श्रीवास्तव, BBC सूरत।
तो गुजरात के सूरत में नोटबंदी के बाद हीरा उद्योग में कमर टूट गई है और मजदूरों का हाल बेहाल है। यदि आप इस ग्राउंड रिपोर्ट को जो आपने सुनी, यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो bbchindi.com पर इस समय लीड खबर यही है, इसे पढ़ने के लिए आ सकते हैं। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल की खबरों की। राखी शर्मा मौजूद हैं। राखी, 5 टेस्ट मैचों की जो सीरीज थी
जी,
आगाज उसका हुआ और उसके बाद भारत के खाते में।
बिल्कुल, रविंद्र जडेजा के 10 विकेट और बेहतरीन फील्डिंग के दम पर भारत ने आज इंग्लैंड को चेन्नई टेस्ट, जो कि पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच था 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का, इसमें पारी और 75 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने ये सीरीज 4-0 से जीत ली है। इंग्लैंड ने आज सुबह जिस तरह से शुरुआत की थी उससे लग रहा था कि वो मैच बचाने में कामयाब रहेगा, लेकिन इसके बाद जडेजा की गेंदबाजी ने मैच में भारत की वापसी कराई और उसकी झोली में ये मैच डाल दिया। जडेजा ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए 48 रन देकर 7 विकेट लिए। इसके अलावा उन्होंने 3 कैच भी लपके और केवल 2 सेशन के अंदर इंग्लैंड के 10 विकेट निकालने और उसकी पारी 207 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। किसी मैच में 154 रन देकर 10 विकेट लेना ये जडेजा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन भी है। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 477 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारत ने करुण नायर के नाबाद 303 रन और लोकेश राहुल के 199 रन के दम पर अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 759 रन पर घोषित की। पहली पारी के आधार पर भारत को 282 रन की बढ़त हासिल हुई थी और आज सुबह जब इंग्लैंड ने शुरुआत की थी तो वो भारत से पहली पारी के आधार पर 270 रन पीछे था। पहला सेशन इंग्लैंड के नाम रहा लेकिन दूसरे सेशन से कहानी थोड़ी सी बदल गई। इंग्लैंड ने 104 रन के अंदर अपने सभी विकेट गंवा दिए। इस सीरीज में विराट कोहली को 655 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज
कुछ और रिकॉर्ड भी बने हैं।
बिल्कुल भारत का जहां तक सवाल है तो पिछले 18 टेस्ट मैचों में भारत ने कोई मैच नहीं गवाया है जो कि एक नया भारतीय रिकॉर्ड भी है। साथ ही भारत ने इस साल कुछ 9 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की है। कैलेंडर साल में भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
बहुत बहुत शुक्रिया राकेश शर्मा। और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने बर्लिन के क्रिसमस बाजार में हुए ट्रक हादसे को दिल दहलाने वाली घटना बताया और कहा कि उनकी सरकार का अनुमान है कि एक चरमपंथी कार्रवाई थी। रूसी जांचकर्ताओं की 18 सदस्यीय एक टीम तुर्की पहुंची है जो इस बात की जांच करेगी कि तुर्की में रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोव की हत्या की वजह क्या रही होगी। नेपाल की पुलिस 15 साल की एक किशोरी की मौत की जांच कर रही है जिसे एक हिंदू प्रथा के तहत माहवारी के दौरान एक अलग थलग स्थान पर रहने को कहा गया था। पूर्वी अलेप्पो में बचे लड़ाकों और नागरिकों को वहां से निकालने के लिए सीरियाई सेना लाउडस्पीकर पर लगातार संदेश जारी कर रही है। संदेशों में चेतावनी दी जा रही है कि सेना उस इलाके में आज प्रवेश कर जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन में पता चला है कि करीब 46% अफ्रीकी नागरिक हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश में सस्ते कपड़े बनाने वाली 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों के हजारों कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।